तो अभी अगले जो पल आने वाले हैं वो वैरायटी रहेंगे, लंबे लंबे सेशन नहीं रहेंगे, छोटे छोटे सेशन रहेंगे, और जिनमें आपको बहुत ही सोलफुल चीजें जानने को समझने को मिलेंगी और अभ्यास करने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले सेशन जो आपने अभी तक किए हैं अच्छे लग रहे हैं, मन लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है तो एक क्लैपिंग आपके लिए। नहीं अच्छी वाली आई, दोबारा से करके दिखाओ। हाँ तो अभी हमारे बीच में जो वक्ता आने वाले हैं उनकी कई सारी विशेषताएं हैं जिन्हें आप जानेंगे, और उनके द्वारा कुछ ऐसी स्वास्थ्य की टिप्स हम जानेंगे जो जीवन को परिवर्तन करने वाली हैं। तो जिन शख्सियत को मैं आप सबके लिए आमंत्रित करने वाला हूं उनका नाम है डॉक्टर अक्षय कुमार ढींगरा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। देखिए इन तालियों का मतलब ये है कि जब आप ऊपर आएंगे और आपके लिए भी इतनी थोड़ी थोड़ी ताली बजेंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बीच में हाँ। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें, और डॉक्टर अक्षय ढींगरा जी का परिचय तो बहुत बड़ा है, अनुभव भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं छोटे से संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि आपका करंट से बहुत ताल्लुक रहा है, करंट यानी जो बिजली के करंट होते हैं उनसे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे हैं और चीफ इंजीनियर की पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, और उसके बाद आपने प्रोफेसर की सेवाएं दी है, आपने मैनेजमेंट में बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की हैं, और साथ साथ आपकी रुचि योगा में रही है और न्यूट्रिशन में रही है। तो जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के भी बाद इन्होंने लंबे समय तक अध्यापन का कार्य किया थापर यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से अब ये फुल टाइम योगा के माध्यम से समाज सेवा करते हैं और न्यूट्रिशन के साथ समाज सेवा करते हैं। तो हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि जीवन में स्वास्थ्य के प्रति हम कितने सजग रहे। आप अंदाजा लगाइए भाई साहब की एज कितनी होगी, मेरे हिसाब से 70 प्लस है, आप देखिए आपके हिसाब से कितनी होगी। ये सब योगा का कमाल है, क्योंकि फिजिक ठीक रहता है तो मन ठीक रहता है, और मन ठीक रहता है तो आध्यात्मिक चीजें हमें जल्दी से प्रभावित करती है, और जब हमारे जीवन में अध्यात्म आता है तो हम जीवन में गुणात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन शुरू करें और हेल्थ पे टिप्स देंगे हमें। तो एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। वेल मैं रफी ने बताया कि आई हैव ए ग्रेट इंटरेस्ट इन न्यूट्रिशन एंड आई बीन स्टडिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक गांव में किसान था, वो अक्सर बड़ा बीमार रहता था, बड़ी उसकी तबीयत जल्दी जल्दी खराब हो जाती थी, और हर महीने डॉक्टर के पास जाता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर जाता था। तो उस गांव में एक दिन योग गुरु आए, उसने उनको बताई अपनी प्रॉब्लम। तो योग ने कहा कि तुम अपनी जमीन की कैसे देखभाल करते हो? कहता है जी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, हमें उसको टाइम पे पानी देना पड़ता है, खाद डिफरेंट, और देखना पड़ता है कोई चीज गलत तो नहीं उग गई, मतलब हमें खूब ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर के फसल कहीं अच्छी होती है। तो कहते यही चीज आप अपनी बॉडी पे क्यों नहीं लागू करते? तुम अपनी बॉडी का ख्याल करो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी जमीन है। और उसने योग गुरु ने उसको बताया जैसे तुम्हारी बॉडी की जमीन तुम्हारी आते, तुम अपनी आंतों का ख्याल करो, तुम्हारी बॉडी ख्याल रहेगी। और उसने उसको वो टिप्स दिए और जीवन शैली में बदलाव करने को कहा। किसान ने वही किया और कुछ ही महीनों में किसान बड़ा तंदुरुस्त हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया और बड़ा खुश हो गया। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, गट हेल्थ एंड गट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इन गट हेल्थ। तो गट हेल्थ पे आने से पहले थोड़ा सा हम ना ब्रीफली समझ लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। कैसे खाना हमारे खाने का रूट क्या है। जब हम मुंह से खाना शुरू करते हैं, चबाते हैं, तो मुंह से एंजाइम उसमें डिजॉल्व होते हैं और फिर एसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द मोमेंट इट सेंसेस दैट फूड हैज कम, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट एसिड इज ए वेरी कंसेंट्रेटेड एसिड। इट हैज गॉट ए पीएच ऑफ 1.5 to 3 पीएच वैल्यू, विच मीन्स इट इज ए वेरी कंसेंट्रेटेड एसिड। और अगर वो एसिड बाहर ग्लास में मिल जाए और उसमें आप ब्लेड के टुकड़े डालें तो वो उसको भी डिजोल्व कर देगा, इतना वो कंसेंट्रेटेड होता है। लेकिन वो स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता क्योंकि स्टमक की इंटरनल म्यूकस लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब खाना स्टमक में पहुंचा तो अब ये एसिड जो है खाने को ब्रेक करता है, खूब उसको जितने टुकड़े होते हैं उसको ब्रेक कर पाता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो इजिली ब्रेक कर पाएगा, बड़े टुकड़े आगे जाके बताऊंगा क्यों तंग करते हैं। वहां खाना हमारा ब्रेक हो गया स्टिल, और उसमें कुछ और स्मॉल एसिड्स भी आते हैं, डाइजेस्टिव एसिड्स जो पेट में आते हैं, बट दे आर नेग्लिजिबल। उसके बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में हमारे और जैसे लिवर के जूसेस हैं, पेंक्रियास के हैं, गॉल ब्लैडर के हैं, वो जूसेस उसमें मिक्स होते हैं, दे ऑल हेल्प इन डाइजेशन। अब वो जूसेस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाते हैं और वो फ्लो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एक 8 फुट लंबी ट्यूब है, 8 फुट अबाउट मोर देन 2 मीटर्स, यू नो, जो इस तरह से आपने फोटो देखी होंगी, इस तरह से रेक्टेंगुलर बेसिस पे वो पेट के चारों तरफ लिपटी होती हैं। और वहां से ये खाना जो है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जिसे हम कोलोन कहते हैं, और कोलोन से ये अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर के एक्सक्रीट होके बाहर जाता है। अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें हमारा खाना जो ब्रेक हो करके जूसेस मिल करके इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ओनली, सारा लिक्विड बन जाता है। और वो जैसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, आपने सुना होगा साइंटिफिक टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो उसमें जो पार्टिकल्स हैं खाने में, मोटे पार्टिकल्स हैं, वो उसमें रह जाते हैं और उसमें सॉल्यूशन जो है वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। अब वो जो सॉल्यूशन है बाहर निकल जाता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, एंड दिस इज हाउ फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। जो पार्टिकल्स रह जाएंगे वो आगे आगे डेवलप ट्रेवल हो करके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, और ये स्लो प्रोसेस है तय खाने को मूव करने में। आपने इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जैसे आपके घरों में ना वो आरओ फिल्टर्स हैं। आरओ मींस रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मींस कि जो आरओ फिल्टर में होता है उसमें पार्टिकल्स रहते हैं और क्लीन वाटर ट्यूब के अंदर जाता है, जो क्लीन वाटर हमें मिलता है। जबकि पेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स अंदर रहते हैं और क्लीन जो लिक्विड है वो बाहर जाता है और ब्लड में मिलता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए आरओ फिल्टर। आरओ फिल्टर की डेवलपमेंट भी यही साइंटिफिक साइंस देख के हुई थी। अब में इस खाने में से जो वाटर कंटेंट होता है वो फिर एब्जॉर्ब होता है एंड इट बिकम्स विच वी एक्सपेल। This is the basic digestive system which have. Again, you know, like we know, we can tell a lot about our health, or we are very conscious about our health in what we intake, what is our intake, what we eat. Similarly, what we excrete, what we expel can also tell a lot about your health. If you develop the habit of, actually, ये जो poo है इसके बारे में बात करना क्योंकि बड़ा डर्टी वर्ड माना जाता है यहाँ पे, लेकिन इट टेल्स ए लॉट अबाउट योर हेल्थ एंड यू आर द ओनली पर्सन हु So before you flush it out, give it 2-3 seconds, look at the poo and see what type of it is. Fecals, whatever it is. There is a problem in the mic. Okay. So if you give it 2-3 seconds, look at the poo, it can tell you a lot. There are sciences. You know, what I am telling is all science-based. Nothing is from my mind. There are 7-8 types of poo, starting from very watery to very hard ones and ultimately very healthy ones. Watery, of course, you all know it, we all know it, ki it signifies that food is not getting digested, there is a problem, and we go to the doctor, we have to run to the doctor. The in between, there are many types that it will take a long time in discussing it. I'll skip it. But the healthiest poo is the snake-like poo which you get outside. And it should be. If you are getting that, you can feel that your internal stomach is healthy and you are eating properly. Now comes what should we eat? What are probiotics and what is gut health? What is meant by gut? Most of you may be knowing. ये जो मैंने आपको system बताया ना, इसमें तीन चीजें, सिर्फ अपना आपका stomach, small intestine और large intestine और colon. This combined is called gut. This is the definition. Gut बड़ा science में आता है, बड़ा उसमें पढ़ा भी जाता है अखबारों में कि gut health अच्छी होनी चाहिए. और हमारा आयुर्वेद तो सैकड़ों सालों से कह रहा है कि अगर आपका गट अच्छा है तो 80% प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही नहीं. और अब साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया कि अगर आपका गट अच्छा है तो आप यू आर मेंटली वेल बीइंग, यू विल लिव लॉन्ग, यू हैव ए मच बेटर इम्यून सिस्टम एंड सो मेनी, योर ब्लड प्रेशर, योर डायबिटीज, सो मेनी थिंग्स आर कंट्रोल्ड इफ योर गट इज स्ट्रांग. Now we come to the point, how to make it strong and what is gut and what is inside it. Gut ke andar, aapne suna hoga, jaise humare ye cells hai na, is tarah ke minute bacteria hote hain, jisko good bacteria aur bad bacteria mein classify kiya hota hai. This their quantity is in trillions and they are present in our gut. Small intestine, all three of them. Good bacteria helps in digestion. Bad bacteria create problems. But nature has provided a balance of good bacteria and bad bacteria generally for healthy people. But if we have an inflammation, if we have a problem, it means that the quantity of good bacteria is less and quantity of bad bacteria is more. और ये इम्बैलेंस हो गया है. इसके इम्बैलेंस ही हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हो या इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है. देता है ना, वी ऑल नो, अरे इन इंडिया एंटीबायोटिक इज द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट वेरी टू मच प्रिस्क्राइब्ड आइटम. हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा नुकसान है, ये ठीक तो जल्दी कर देता है लेकिन इसका काम है बैक्टीरिया मारना. और जब ये बैक्टीरिया मारता है तो इस ये नहीं देखता कि ये गुड बैक्टीरिया मार रहा है या बैड बैक्टीरिया मार रहा है. विद द रिजल्ट इट किल्स बोथ ऑफ देम. इट किल्स गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, बैड बैक्टीरिया ऑल्सो. जब बैड बैक्टीरिया मारता है तो हम ठीक होते हैं, हम समझते हैं यार एंटीबायोटिक तो बहुत बढ़िया चीज है, खाते ही मजा आ गया, ठीक हो गए. लेकिन इसने एक बड़ी भारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारे पेट में, वो थी इसने गुड बैक्टीरिया मार दिया. और अब जनरली डॉक्टर्स इसलिए आपको कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक के साथ कोई स्प्रोलैक वगैरह खाओ या कोई विटामिन खाओ या मल्टीविटामिन खाओ. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सप्लीमेंट्स गुड बैक्टीरिया के होते हैं, वो आपके अंदर, उसको पता है, डॉक्टर को, सबको पता है कि ये जाकर के एंटीबायोटिक मारेगा और हमें गुड बैक्टीरिया रहना है. पर ये तो एक तरीका है जो हम गोलियों के पे बेस्ड है, दवाइयों पे बेस्ड है, और हम नहीं जानते कि वो दवाई अंदर जा करके क्या कर रही है। तो उससे बेहतर है कि हम खुद अपने आप अपने गुड बैक्टीरिया को थोड़ा बढ़ा करके रखें। और कैसे बढ़ा करके रखें, वो उसका आंसर है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, जो हमारा मेरा आज का मेन टॉपिक है, गट हेल्थ, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे हमारे ये गुड बैक्टीरिया को वो जो है वो बढ़ाते हैं। और तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच वी टेक इंटेंशनली, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग। क्या किसमें होते हैं, दही में होते हैं। किसमें होते हैं, अचार में होते हैं, जो घर के बने हुए अचार में होते हैं। किसमें ऐसी कई चीजें हैं, फर्मेंटेड फूड में होते हैं। फर्मेंटेड फूड हम रोज खाएं, उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। गोलियों से भी खा सकते हैं, पर जो फूड जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चीजों से खाएंगे, वो हमारे डायरेक्टली वी नो व्हाट वी आर टेकिंग, वी नो दैट दे आर गुड बैक्टीरिया एंड वी आर टेकिंग इट। गोली का हमें क्या पता, स्प्रोलैक का हमें क्या पता कि वो असली है, अंदर जाके काम करती है नहीं करती या क्या है, इसका तो पता है भाई। हम फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, हम इडली खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, कोई भी फर्मेंटेड जो दही खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, जिसमें भी। अब इसलिए रिकमेंड करते हैं, सब आयुर्वेद भी रिकमेंड करता है कि कम से कम एक बार आपको ये चीजें रोज खानी चाहिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए गुड गट हेल्थ। और एक टाइम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, आप खा सकते हैं दही रोज खा सकते हैं, पर दही में जैसे योगर्ट जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया एडिशनल डाले होते हैं, दही में जनरली नमक नहीं ज्यादा डालना चाहिए। नमक डालने से वही बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो आपका दही खाना जो है ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। पूरे तो नहीं मरते पर मोस्टली मर जाते हैं। तो बेटर है आप दही, और उससे भी बेटर है कि आप छाछ पिए रोज। छाछ इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, और प्रोबेबली जो साउथ इंडियन फूड्स हैं उन वो लोग इन चीजों का बहुत ख्याल करते हैं। हमारे नॉर्थ इंडियन से तो काफी ज्यादा ख्याल करते हैं वो लोग। छाछ उस तरह की रोज पीते हैं वो लोग, फर्मेंटेड फूड रोज खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं और काफी क्वांटिटीज में खाते हैं, और ये उनका स्टेपल फूड है। हम तो इडली शौकीय खाते हैं, उन तो डेली खाते हैं। एंड इडली एनी एवरीथिंग फर्मेंटेड विल हैव लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइव गुड बैक्टीरिया विच गो इनसाइड। अब दूसरी बात कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रीबायोटिक्स आर द फूड टू द प्रोबायोटिक्स, फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया। जो हमारा गुड बैक्टीरिया कॉलोनीज अंदर बनी है, उनको खुद भी तो कुछ चाहिए खाने को, या खुद भी तो कोई चीज उनको ग्रो करने के लिए चाहिए, तो वो क्या खाएं, वो हमारी ऑर्डिनरी खाने में से नहीं कुछ खा सकते, वो ऑर्डिनरी खाने में से नहीं खा, वो खाते हैं उनका उनका जो खाना है उसको प्रीबायोटिक्स कहते हैं। अब दो तरीके हैं उनका खाना अच्छा करने के लिए, नहीं तो वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया कम हो। तो उनका खाना प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका कि हम वो वाला खाना खाएं जिसमें प्रीबायोटिक्स ज्यादा होते हैं। वो खाना होता है आपके लहसुन, बनानास, अनियन, लेंटिल्स, और इस तरह की और दो चार चीजें होंगी जो याद नहीं रहती, काफी होती है, मतलब जनरली ये चार पांच है। कम से कम आप एक बनाना रोज खाएं, मैक्सिमम तीन, पर कम से कम एक बनाना इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स हेल्दी हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर द स्टमक, इफ यू वांट टू सी यू कैन गूगल ऑन इट आल्सो, बनाना इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड्स फॉर योर स्टमक। मस्ट ईट वन बनाना एटलीस्ट वन डे पर डे। और दूसरा इनका प्रीबायोटिक क्या होता है, दूसरा मैंने बताया आपको अलनिया, और एक होता है दैट इज अनडाइजेस्टेड फाइबर। जो हम फाइबर खाते हैं, जैसे आप कहेंगे कि भाई ये जो गरीब लोग हैं इतना मेहनत करते हैं, ये करते हैं, ये तो नहीं करते इतना, फिर भी ठीक रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत हम लोग भी करें तो हमें भी इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा इसलिए खड़ी हुई हैं और ये सब इसलिए चीजें रिसर्च हुई है, इसलिए बनी है कि हमारी लाइफ सेडेंटरी होती जा रही है और सेडेंटरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये दुनिया भर की आप लाइफस्टाइल डिजीजेस कहें तो वो सब आ गई हैं और ये आती हैं। एंड रिमेम्बर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड गट हेल्थ, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द ट्रॉमा केसेस। फॉर अस स्टिल एलोपैथिक इज द बेस्ट आंसर बिकॉज ट्रॉमा केसेस मीन्स आपको सडनली कोई खून बह रहा है, कोई हाथ कट गया कहीं, तो हमें जाना ही जाना है। पर अदरवाइज फॉर ऑल अदर थिंग्स प्रोबेबली आयुर्वेदा एंड गुड फूड इज द आंसर टू योर मेनी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ यू डू इट रेगुलरली एंड इफ यू आर केयरफुल अबाउट वॉट यू ईट एंड यू ईट डेली विदाउट फेल। तो हम आ रहे थे प्रीबायोटिक्स पर। प्रीबायोटिक्स एक और चीज से उनका खाना है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फाइबर। जैसे हम फाइबर खाते हैं ना, फाइबर बहुत कुछ है, आप आलू खा रहे हैं या कोई भी चीज खाओ किसमें कुछ थोड़ा बहुत फाइबर होगा, तो फाइबर जनरली स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन उसका कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रहता है। तो वो अनडाइजेस्टेड फाइबर जब कोलोन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन लाइन में पहुंचता है, तो दैट बिकम्स ए फूड फॉर द प्रोबायोटिक्स, फूड फॉर द कॉलोनी ऑफ द लाइव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर वो बहुत कम होता है और वो सफिशिएंट नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हमें पता नहीं होता कि अनडाइजेस्टेड फाइबर हमारा हुआ कि नहीं, हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज रोज खाएं जिसमें प्रीबायोटिक्स भी हो, प्रोबायोटिक्स भी हो। और उसमें क्या होता है, क्या चीज है, अब हमारी आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, नट्स एंड सीड्स खाएं, ये भिगो करके खाएं और ये आपको एक बैलेंस डाइट देगी। और बैलेंस डाइट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। बैलेंस डाइट, व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस डाइट, अभी थोड़ा सा आ जाएगा कि हम बैलेंस डाइट कहते किसको हैं। बैलेंस डाइट इज योर थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे आर द प्राइमरी वर्ड्स, प्लस वाटर ऑल्सो। ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। देन वी हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल मिनरल्स, देर आर एट ऑफ देम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक एंड ऑल दोज एट ऑफ देम, दे रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल विटामिन्स। ये मिलाकर के 14 विटामिन्स हैं, बी कैटेगरी के हैं, बी विटामिन के है, विटामिन ए है और 5-6 बी कैटेगरी के, टोटल 14 होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इटसेल्फ मींस कि दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेयर एज मैक्रो मींस दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी।
सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का क्योंकि अगला सेशन आप एक बार
ओके दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक वन मिनट आई विल कंक्लूड यू नो दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक बट आई विल टू मिनट्स आई विल कंक्लूड। कंक्लूजन इज इफ यू आर केयरफुल अबाउट हेल्दी फूड अबाउट व्हाट यू ईट हाउ यू ईट यू कैन डिस्पेल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड यू कैन रिवर्स डायबिटीज हाई बीपी एनीथिंग लाइक। और योगा हैज बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स। ये तो अनएंडिंग टॉपिक है हम सबको पता है बट वी हैव लिमिटेड टाइम सो थैंक यू वेरी मच।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब और